मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 16 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं अवस्फीति, जिसे आप इंग्लिश में डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण घोषणा जो केंद्र सरकार ने की है MSME के बारे में, मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट सूचना है और महत्वपूर्ण बात है कि इसके बारे में जो अखबार मैंने पढ़े हैं और ध्यान से पढ़ने की कोशिश की है, मुझे वहां कुछ लिखा हुआ नहीं मिला। दोस्तों, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की सच पूछे तो तैयारी की एक चुनौती होती है, घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, राइट, अखबारों की दृष्टि से नहीं हो सकती, आम लोगों की दृष्टि से नहीं हो सकती। तो यहां आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है और सच पूछे तो डेली ऑडियो लेक्चर में मैं इस तरह से पूरी सतर्कता बरतने की हर संभव कोशिश करता हूं, लेकिन हो सकता है कि कभी कोई बात छूट भी जाए। तो जो महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, वो ये कि आप MSME के बारे में जानते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। सरकार ने यह घोषणा की है कि जो हमारे नर्सिंग होम होते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं, स्मॉल हॉस्पिटल कह लीजिए, जो मीडियम हॉस्पिटल होते हैं, उनको भी MSME में शामिल कर लिया गया है, स्मॉल एंड मीडियम हॉस्पिटल। तो किसे आप स्मॉल हॉस्पिटल कहेंगे और किसे आप मीडियम हॉस्पिटल कहेंगे, बकायदे उसकी भी डेफिनेशन बताई गई है। जो स्मॉल हॉस्पिटल हैं, वे अस्पताल हैं जिनके पास 100 बिस्तरों की क्षमता है, यानी कि वो 100 पेशेंट एडमिट कर सकते हैं, 100 बिस्तर। और जो मीडियम हॉस्पिटल हैं उसके तहत 100 से लेकर 300 बेड वाले जो हॉस्पिटल होते हैं वो मीडियम कहलाएंगे, और 300 से जो ऊपर वाले होते हैं वो फिर बड़े अस्पतालों में आ जाते हैं। तो इन अस्पतालों को MSME में शामिल करने से, आप यूं कह लीजिए कि जो लाभ लघु, आप कह लीजिए सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को मिलते हैं, जैसे कहीं उनको लोन सस्ते ब्याज दर पर मिल जाएगा और जो दूसरी फैसिलिटीज होंगी वो भी इन्हें मिल सकेंगी। दोस्तों, हुआ क्या कि अभी जो कोरोना का जो संकट चल रहा है, उन संकट से अस्पताल भी बहुत ज्यादा जूझ रहे थे, इनके पास जो कैश था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, ऐसा लग रहा था कि अब हमें अस्पताल अपने बंद करने पड़ेंगे। तो ये बकायदे सरकार से बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के बाद सरकार को भी ये लगा कि नहीं, इन्हें मदद की जरूरत है। तो इस घोषणा से लगता है कि डेफिनेटली जो स्मॉल और मीडियम हॉस्पिटल हमारे यहाँ के हैं, उनको एक तरीके से काफी सहायता मिलेगी। तो ये आपको नोट करना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों, ये जो हमारे स्मॉल और मीडियम हॉस्पिटल हैं, जितना भी हमारा हेल्थ केयर है पूरे देश का, लगभग 85% हेल्थ केयर केवल इनके द्वारा किया जाता है। आप देखते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े नामी हॉस्पिटल हैं वो तो बहुत ही बड़े बड़े शहरों में ही हैं, सेकेंड टायर से नीचे में तो है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आप देखते हैं कि सरकारी अस्पताल हैं और दूसरे बहुत कम, जो थोड़ी सी घनी आबादी वाले जो शहर होंगे, अधिक आबादी वाले, वहां थोड़े से आपको स्मॉल मीडियम हॉस्पिटल मिल जाएंगे। अगर इन हॉस्पिटल की स्थिति ठीक कर दी गई तो डेफिनेटली बड़े शहरों में जो पेशेंट का प्रेशर है वो काफी कम होगा। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जैसे अभी कोरोना में आप देखिए कि कैसे इस संकट से हम जूझ रहे हैं, चीजें एक जगह केंद्रित होती चली जा रही, कुछ जगहों पर केंद्रित होती चली जा रही हैं, तो उनका भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सकेगा। और आप जानते हैं कि कोरोना के बाद भारत सरकार को डेफिनेटली अपने स्वास्थ्य नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन करना होगा और अपने GDP का जो खर्च है वह तो इस पर बढ़ाना ही बढ़ाना होगा, इसकी पूरी संभावना लग रही है। दोस्तों, न्यूज में आपने मेथनॉल की चर्चा सुनी। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना के दौर में सैनिटाइजर की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है ना, कि आप हाथ में एक तरह का लिक्विड होता है, आप थोड़ा सा हाथ में डालें और अपना हाथ रगड़ लें ताकि अगर कोरोना वगैरह कहीं लगा हो तो वायरस खत्म हो जाए। अस्पतालों में, घरों में, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड सैनिटाइजर की हो रही है। अभी जो इंटरपोल है उससे ये जानकारी मिली है, भारत सरकार को भी, कि जो नकली सैनिटाइजर बनाने वाले जो लोग हैं वो मेथनॉल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेथनॉल एक ऐसा रसायन पदार्थ है जो बहुत ही घातक होता है, विषाक्त भी होता है। तो यहाँ आपको मेथनॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अब जो साइंस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग इसी पैटर्न के हो गए हैं। तो थोड़ी सी जानकारी जो हो सकती है इसके बारे में वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसका एक नाम आप यूं कह लीजिए कि मिथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं, और इसका जो फार्मूला है, जो केमिस्ट्री का फार्मूला है, वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, वो है CH3OH, CH3OH। ये बहुत ही लाइट होता है, कलरलेस है, रंगहीन है और ज्वलनशील लिक्विड भी है ना, इसमें अगर आग दिखा दी जाए तो ये जलने लगता है, और इसकी में जो गंध है जैसे अल्कोहल की गंध होती है उस तरह की गंध आती है। दोस्तों इसके जो उपयोग हैं वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में होता है, ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, घुलनशील सॉल्वेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, एंटीफ्रीजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो बायोडीजल हमारे यहाँ बनाया जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, और बियर और स्प्रिट में भी इसकी थोड़ी मात्रा डाली जाती है मेथनॉल। इस बस इतनी ही जानकारी आपके लिए मुझे लगता है कि पर्याप्त होगी, और यदि आप कुछ और जानते हैं साइंस में और भी रुचि अगर आपकी है तो डेफिनेटली थोड़ा सा आप और जानकारी ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है अवस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। इस विषय को मैंने क्यों चुना है, हालांकि दूसरे अखबारों में मुझे यह सूचना नहीं मिली है, एक अखबार शायद कोई टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी में थोड़ी सी इसकी चर्चा थी, लेकिन जो बिजनेस स्टैंडर्ड है हिंदी का अखबार, उसके फ्रंट पेज पर और पहली न्यूज है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि थोक महंगाई में अवस्फीति आई, अवस्फीति जिसे हम इंग्लिश में डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, अवस्फीति। तो दोस्तों ऐसी स्थिति, और ये 5 साल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिली है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अर्थशास्त्र विषय की दृष्टि से ये जो अवस्फीति है ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। देखिए जब हम अवस्फीति की बात करते हैं तो अवस्फीति ठीक है, वो महंगाई से जुड़ी हुई एक व्यवस्था है, और अगर हम इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर दें, और अगर स्टूडेंट थोड़ा सा और अच्छी तैयारी करना चाह रहा है, तो इसे आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल होता है, जो आर्थिक चक्र होता है, उस आर्थिक चक्र का ही एक दौर अवस्फीति है। इसका मतलब है कि आपको जो आर्थिक चक्र होता है, जो इकोनॉमिक साइकिल जो होता है, इसके बारे में अच्छी तैयारी करनी चाहिए। और वैसे भी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका संबंध इन्फ्लेशन से है, सीधे सीधे स्फीति से, मुद्रा स्फीति से है, और मुद्रा स्फीति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स का अपने आप में ही। तो सबसे पहले तो जो हमारे ऑनलाइन क्लास के जो पेड स्टूडेंट हैं उनको मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि आर्थिक चक्र पर बकायदे एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया है, बहुत विस्तार से वो लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, बहुत डिटेल में जाकर के उदाहरणों के जरिए समझाने की कोशिश की गई है, ताकि यह जो विषय है वो आपके दिमाग में रच बस जाए। उसमें बताया गया है कि जो आर्थिक चक्र के अलग अलग नाम हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो रिकवरी हो, चाहे वो रिसेशन हो, चाहे वो स्लो डाउन हो, चाहे वो डिसइन्फ्लेशन हो, चाहे वो बूम हो, ये सब क्या होते हैं। तो भले ही आप अपने सिस्टम के तहत स्टडी करते रहिए, लेकिन इस आर्ट के ये जो लेक्चर है, प्लीज इस लेक्चर को आप जरूर सुन लें, आप देखेंगे कि सुनने के बाद आपके समझ में आ जाएगा। और मैं ये अर्ज भी करना चाहूंगा कि सुनने के बाद आपको ये जो लेक्चर है कितना समझ में आया, किस तरह का लगा, अगर आप मेल के द्वारा मुझे सूचित कर सकेंगे तो इससे मुझे आप यूं कह लीजिए कि आप लोगों की तरफ से जो फीडबैक मिलेगा उसे मैं अपने निर्देश के रूप में स्वीकार करके आगे की चीजों को और बेहतर बनाने की ओर बढ़ सकूंगा। दोस्तों जो बिजनेस स्टैंडर्ड है, देखिए उसमें जो वाक्य है, शुरू का वाक्य वो मैं पढ़ रहा हूं, देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड की जबरदस्त चोट का एक और संकेत तब मिला जब थोक महंगाई सूचकांक मई में 3.2% लुढ़क गया। महंगाई लुढ़क गई। सामान्यतः हम यही सुनते हैं ना कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर चिंतित है। सच पूछे तो हम लोग भी जब महंगाई बढ़ती है तो थोड़े से चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यार महंगाई इतनी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, अगर नहीं बढ़नी चाहिए तो फिर हमारे दिमाग में आता है कितना अच्छा होता ना कि ये चीज सस्ती हो जाती, ये चीज कितना अच्छा होता। अभी कल मैं ध्रुव राठी का एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, जिसमें उन्होंने बताया है महंगाई वगैरह इन्फ्लेशन के बारे में बताया, और उसमें शुरुआती उन्होंने एक बहुत अच्छे से बात से की कि 1958 में अगर आपके पास 1 रुपए 20 पैसे थे तो उसकी कीमत अब 100 रुपए के बराबर है 2020 में, यानी कि सन 2020 में जो चीज 100 रुपए की मिल रही है वही चीज आपको 1958 में 1 रुपए 20 पैसे की मिलती थी। ये उन्होंने, और इसके बाद फिर उन्होंने अपनी बात कही है। अब आप देखिए कि हमको यही लगता है कि यार देखो 1 रुपए 20 पैसे में कितना सस्ता काल था और कितना अच्छा रहा होगा, ऐसा नहीं होता। उस समय 1 रुपए 20 पैसे कमाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती जितनी कि अभी 100 रुपए कमाने के लिए करनी पड़ती है सामान्यतया, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं लेकिन सामान्यतया। तो हम यही सोचते हैं कि चीजें अगर सस्ती हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, लेकिन दोस्तों सच में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर जब चीजें इस तरह से सस्ती होने लगती हैं जो अभी आप देख रहे हैं तो ये सरकार के लिए चिंता का कारण होता है। अगर चीजें सस्ती हो रही हैं इसका मतलब है कि मार्केट में वस्तुओं की डिमांड कम हो रही है। सोच के देखिए, चीजें तभी तो सस्ती हो रही है ना, डिमांड कम हो रही है। तो सवाल यह है कि भाई डिमांड क्यों कम हो रही है? अगर डिमांड कम हो रही है तो इसका मतलब है कि लोग चीजें खरीद नहीं रहे हैं। फिर आप सोचिए कि लोग चीजें क्यों नहीं खरीद रहे हैं? फिर आपके दिमाग में आएगा कि लोग चीजें इसलिए तो हो सकता है कि न खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? तब समझ में आएगा कि भैया रोजगार नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, इसका मतलब है कि रोजगार में कमी आ रही है। अगर रोजगार में कमी आ रही है तो इसका मतलब है कि उद्योग बंद हो रहे हैं। सोच करके सोचिए कि क्या हम साइकिल में फंस जाएंगे। इसीलिए कुछ समय पहले अखबारों में काफी आया था और उस पर मैंने चर्चा भी की थी कि सरकार बकायदे राहत पैकेज लेके आए, 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज। उसके केंद्र में क्या था? उसके केंद्र में यही है ना कि मार्केट में डिमांड जनरेट करे, डिमांड क्रिएट करे, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाए ताकि वो वस्तुओं की मांग करें, और जब वस्तुओं की मांग होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होंगी, आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। तो दोस्तों ये अवस्फीति की स्थिति आई है मई के महीने में, जो एक चिंता का कारण है। और डेफिनेटली जब ऐसी स्थिति आई है तो अब सरकार कोशिश करेगी कि इस अवस्फीति को, यानी कि आपके लिए जो चीजें सस्ती हो रही हैं उसको रोके और इसके बाद इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बढ़ाए, क्योंकि देखिए कुछ सीमा तक खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में जो इन्फ्लेशन होता है वो बेहतर माना जाता है। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है इसका मतलब है कि बाजार में वस्तुओं की मांग बनी हुई है। हाँ, एक सीमा के बाद अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, जिसे सामान्यतः एबव 5% कहते हैं, अगर 5% से अधिक महंगाई बढ़ रही है तो फिर सरकार उसे रोकने की कोशिश करती है। सरकार भी कोशिश करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत उस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों चूंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं इस पर डिटेल में आपसे बात कर सकूं, लेकिन दूसरे स्टूडेंट के लिए भी मेरा सजेशन है कि अगर आप लोगों के पास अर्थशास्त्र की किताब हो तो आप आर्थिक चक्र, या हो सकता है कि उस चैप्टर का नाम कुछ दूसरा भी हो जिसमें डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी, डिसइन्फ्लेशन इनके बारे में दिया हुआ हो, एक नजर तो उस पर जरूर मार लें। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस आज इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: रीनू यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अशोक कुमार यादव कोरबा छत्तीसगढ़ से, साना आनंद गुजरात से, आदित्य सोनी और दीपा राजपूत। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।